लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि जिन समाजों में सह अस्तित्व अधिक कठिन प्रतीत होता है, वे जातीय, राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से टकराव के प्रलोभन में न फंसें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है युवाओं की जयंती के लिए पोप लियो 14वें का ख्रिस्त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। युवाओं की जयंती के अवसर पर आयोजित पावन ख्रिस्त्याग में पोप लियो 14वें ने युवाओं को याद दिलाया कि यीशु ही हमारी आशा है और हमारी आत्मा की खिड़की पर धीरे से दस्तक दे रहे हैं। रोम के बाहरी इलाके में स्थित तोर विरगाता में युवाओं की जयंती के अवसर पर लाखों युवाओं के साथ पावन ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए पोप लियो 14वें ने रविवार 3 अगस्त को अपने उपदेश में कहा,
dopo la veglia vissuta assieme ieri sera, ci ritroviamo oggi per celebrare l'Eucaristia.
प्रिय युवाओं, कल रात की जागरण प्रार्थना के बाद आज हम यूकारिस्ट में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो प्रभु द्वारा हमें स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने का संस्कार है। इस अनुभव में हम कल्पना कर सकते हैं कि हम पास्का की शाम को एमाउस के शिष्यों द्वारा की गई यात्रा को दोहरा रहे हैं। पहले तो वे भयभीत एवं निराश होकर यरूशलेम चले गए थे। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि यीशु की मृत्यु के बाद उनके पास उम्मीद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कोई आशा नहीं है। फिर भी उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्हें एक साथी के रूप में स्वीकार किया। जब यीशु ने धर्म ग्रंथ की व्याख्या की तो वे उनकी बातें सुनी और अंततः रोटी तोड़ते समय उन्हें पहचान लिया। तब उनकी आंखें खुल गई और पास्का के आनंद में संदेश ने उनके हृदय में जगह बना ली। संत पापा ने कहा, आज की धर्म विधि हमें इस प्रसंग के बारे में सीधे तौर पर नहीं बताती, लेकिन यह हमें पुनर्जीवित मसीह के साथ मुलाकात पर चिंतन करने में मदद करती है, जो हमारे अस्तित्व को बदल देता, जो हमारे स्नेह, इच्छाओं और विचारों को आलोकित करता है। आगे संत पापा ने पहले पाठ पर चिंतन करते हुए कहा, पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से लिया गया है, जो हमें उन दो शिष्यों की तरह जिनके बारे में हमने बात की है अपनी सीमाओं के अनुभव को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो क्षणभंगुर चीज की तरह समाप्त हो जाती। भजन अनुवाद के इसे प्रतिध्वनित करता और हमारे लिए घास की छवि प्रस्तुत करता है, जो सुबह उगती, खिलती, प्रस्फुटित होती और शाम को कट जाती एवं सूख जाती है। ये दो प्रभावशाली अनुस्मारक हैं, शायद थोड़े चौंकाने वाले, लेकिन इनसे हमें नहीं डरना चाहिए। जिस नाजुकता की ये बात करते हैं वह दरअसल उस आश्चर्य का हिस्सा है जो हम हैं। घास के प्रतीक पर गौर करें, क्या खिलता हुआ घास का मैदान सुंदर नहीं है? जी हाँ, यह नाजुक है, पतले नाजुक तनों से बना है, आसानी से सूख झुक एवं टूट सकता है, फिर भी तुरंत ही दूसरे पौधे उग आते हैं जो उनके बाद बढ़ते हैं और जिनके पुराने तने जमीन में घिसते हुए उदारता पूर्वक पोषक एवं उर्वरक बन जाते हैं। इस तरह यह मैदान हरा भरा बना रहता है, लगातार खुद को नवीकृत करता और सर्दियों के ठंडे महीनों में भी जब सब कुछ शांत लगता उसकी ऊर्जा भूमि से आती है और बसंत ऋतु में हजारों रंगों में खिलने के लिए तैयार होती है। पोप ने कहा, प्यारे दोस्तों, हम इसी तरह बने हैं, ऐसे जीवन के लिए नहीं जहां सब कुछ निश्चित है और निश्चित मान लिया जाता है, बल्कि ऐसे अस्तित्व के लिए जो निरंतर देने और प्रेम करने में पुनर्जीवित होता रहता है, और इसलिए हम हमेशा कुछ अधिक पाने की आकांक्षा रखते हैं, जिसे कोई भी श्रेष्ठ वस्तु हमें नहीं दे सकती। हम एक तेज एवं तीव्र प्यास महसूस करते हैं, इतने तीव्र कि इस संसार का कोई भी पेय उसे बुझा नहीं सकता। इस प्यास का सामना करते हुए हम अपने हृदय को धोखा ना दें, उससे अप्रभावी विकल्पों से बुझाने का प्रयास ना करें। इसके बजाय आइए हम इसकी बात सुने, आइए हम इसे एक साधन बनाएं जिस पर हम चढ़ सकें, ताकि बच्चों की तरह हम ईश्वर से अपने मिलन की खिड़की की ओर पैर की उंगलियों पर चल सकें, और हम स्वयं को उनके सामने पाएंगे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, या यूं कहें कि जो हमारी आत्मा की खिड़की पर धीरे से दस्तक दे रहे हैं। और 20 साल की उम्र में भी उनके लिए अपना हृदय खोलना, उन्हें प्रवेश करने देना और फिर उनके साथ अनंत के शाश्वत स्थानों की ओर बढ़ना खूबसूरत है। संत अगस्तीन ईश्वर के लिए अपनी गहन खोज के बारे में बोलते हुए प्रश्न करते हैं, तो फिर हमारी आशा का उद्देश्य क्या है? क्या यह धरती है? जी नहीं, ऐसी चीजें जो धरती से आती हैं, जैसे सोना, चांदी, पेड़, फसल, पानी, ये चीजें मन भावन हैं, ये चीजें सुंदर हैं, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, खोजिए कि उन्हें किसने बनाया, वही आपकी आशा है। फिर अपनी यात्रा के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्रार्थना की, आप मेरे भीतर थे और मैं बाहर था, वहां मैंने आपको खोजा, आपने मुझे बुलाया और आपकी पुकार ने मेरे बहरेपन को तोड़ दिया, आप चमके और आपके तेज ने मेरे अंधेपन को दूर किया, आपने अपनी सुगंध फैलाई और मैंने सांस ली और आपके लिए तरस गया, मैंने स्वाद लिया और मैं भूखा एवं प्यासा हूँ, आपने मुझे छुआ और मैं अपनी शांति की इच्छा से जल उठा। पोप फ्रांसिस के शब्दों को याद करते हुए पोप लियो ने कहा, बहनों एवं भाइयों, ये बहुत सुंदर शब्द हैं जो विश्व युवा दिवस के दौरान लिस्बन में पोप फ्रांसिस द्वारा आप जैसे युवाओं के लिए कही गई बातों की याद दिलाते हैं। हम में से प्रत्येक को बड़े प्रश्नों का सामना करने के लिए बुलाया गया है, जिनका कोई सरल या तत्काल उत्तर नहीं है, लेकिन हमें एक यात्रा पर निकलने, खुद को पार करने, उससे परे जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक ऐसी उड़ान की ओर जिसके बिना कोई उड़ान नहीं है। इसलिए अगर हम खुद को आंतरिक रूप से प्यासा, बेचैन, अधूरा, अर्थ एवं भविष्य की लालसा में पाते हैं, तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हम बीमार नहीं हैं, हम जीवित हैं। हमारे दिलों में एक अहम सवाल है, सच्चाई की एक जरूरत है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, सच्ची खुशी क्या है? जीवन का असली मतलब क्या है? हमें कौन सी चीज अर्थहीनता, निरस्ता एवं साधारण होने के ठहरे हुए पाने से आजाद करता है? संत पापा ने युवाओं से कहा, इन दिनों आपको कई अद्भुत अनुभव हुए हैं, आप दुनिया भर के विविध संस्कृतियों से जुड़े साथियों से मिले, आपने ज्ञान का आदान प्रदान किया, उम्मीदें साझा की और कला, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेलों के माध्यम से शहर से जुड़े रहे, फिर चिरको मासिमो में मेल मिलाप संस्कार ग्रहण करके आपने ईश्वर से क्षमा प्राप्त की और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनसे मदद मांगी। इन सब में आप एक महत्वपूर्ण उत्तर समझ सकते हैं, हमारे जीवन की पूर्णता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या संचय करते, और ना ही, जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, इस बात पर कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि हम कितना खुशी से स्वागत करते हैं और किससे बांटते हैं। खरीदना, जमा करना, उपभोग करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आंखें ऊपर उठाकर ऊपर की ओर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखने की जरूरत है, ताकि हम यह समझ सकें कि संसार की वस्तुओं के बीच हर चीज तभी सार्थक है जब वह हमें ईश्वर और हमारे भाइयों से जोड़ती है और हमें कोमलता, दया, नम्रता, सौम्य, धैर्य, क्षमा, शांति और ख्रिस्त के समान की भावनाएं विकसित करती है, और इस क्षितिज में हम तेजी से समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। आशा निराश नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमारे हृदयों में डाला गया है। संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, हमारी आशा यीशु हैं, जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था, वे ही हैं जो आपके जीवन में कुछ महान करने की इच्छा जगाते हैं। स्वयं को और समाज को बेहतर बनाने, उसे और अधिक मानवीय और भ्रातृत्वपूर्ण बनाने की इच्छा। आइए हम उनसे जुड़े रहें, उनकी मित्रता में सदैव बने रहें। प्रार्थना, आराधना, यूखरिस्ते संस्कार बार बार पाप स्वीकार एवं उदार दान के साथ इससे विकसित करें। जैसा कि धन्य पियर जोसेफ रसाती और धन्य कार्लो अकुतिस, जिन्हें जल्द ही संत घोषित किया जाएगा, हमें सिखाते हैं। आप जहाँ भी हों, महान कार्यों पवित्रता की आकांक्षा रखें, कम से संतुष्ट न हों, तब आप सुसमाचार के प्रकाश को प्रतिदिन अपने भीतर और अपने चारों ओर बढ़ता हुआ देखेंगे।
ला लुचे देल वांजेलो।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने युवाओं की जयंती के लिए पोप लियो 14वें के ख्रिस्तत्याग प्रवचन को सुना। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रोम के तोर वेरगाता मैदान में युवाओं की जयंती के मिसा समारोह समापन से पहले संत पापा लियो 14वें ने गाजा, यूक्रेन और दुनिया के युद्धग्रस्त हिस्सों में रहने वाले सभी लोगों के साथ अपनी निकटता और एकजुटता व्यक्त की। संत पापा ने कहा, ईसा मसीह हमारी शांति और दुनिया के लिए आशा के साथ एकता में हम उन युवाओं के पहले से कहीं अधिक करीब हैं जो अन्य मनुष्यों द्वारा उत्पन्न सबसे गंभीर बुराइयों से पीड़ित हैं। हम गाजा के युवाओं के साथ हैं, हम यूक्रेन के युवाओं के साथ हैं, युद्ध से रक्त रंजित हर देश के युवाओं के साथ हैं। मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप इस बात के प्रतीक हैं कि एक अलग दुनिया संभव है, भाईचारे और मित्रता की दुनिया, जहां संघर्षों का समापन हथियारों से नहीं बल्कि संवाद से होता है। संत पापा ने दो युवा तीर्थ यात्रियों स्पेन की मरिया और मिस्र के पास्कल की मृत्यु पर अपनी संवेदना और शोक व्यक्त किया, जिनकी रोम में प्रवास के दौरान अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के कारण मृत्यु हो गई। संत पापा के ये शब्द रविवार की सुबह खुले में आयोजित पवित्र मिसा समारोह में एकत्रित 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों को अंतिम शुभकामनाएं देते हुए देवदूत प्रार्थना का नेतृत्व करने से ठीक पहले आए। उन्होंने इस अवसर पर सभी को अपनी जयंती के इन दिनों के उपहार के लिए ईश्वर के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि कलीसिया और पूरे विश्व के लिए ईश्वर की कृपा की वर्षा सभी युवाओं की भागीदारी में परिलक्षित हुई और उन्होंने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त किया। युवाओं के साथ आए हजारों धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म गुरुओं का अभिवादन करते हुए संत पापा ने उनकी प्रेरितिक देखभाल के लिए साथ ही उन सभी का धन्यवाद दिया जिन्होंने इन आयोजनों के लिए प्रार्थना की और आध्यात्मिक रूप से भाग लिया। अंत में संत पापा ने याद किया कि रोम में इस जयंती आशा की तीर्थ यात्रा के बाद अगला गंतव्य एशिया होगा, जब वे 3-8 अगस्त 2027 को सियोल, कोरिया में विश्व युवा दिवस मनाने के लिए उनके साथ शामिल होंगे। अगले विश्व युवा दिवस का विषय संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है। यह पद अंतिम भोज के समय येसु द्वारा अपने शिष्यों को कहे गए शब्दों को याद दिलाता है, साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संत पापा ने कहा कि हमारे हृदय में बसी हुई आशा हमें बुराई और मृत्यु पर पुनर्जीवित मसीह की विजय की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करे, और यही वास्तविकता युवा तीर्थ यात्रियों को पृथ्वी के छोर तक साक्षी बनने की आशा और साहस प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हम सियोल में होने वाली अगली बैठक के लिए एक साथ स्वप्न देखते रहें और आशा करते रहें और स्वयं को धन्य कुंवारी मरियम की ममतामयी संरक्षण में सौंपते रहें। उधर फिलिस्तीनी सरकार ने रविवार को बिगड़ते मानवीय हालात का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में सीमा पार पूरी तरह से खोलने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का आह्वान किया। यह अपील ऐसे समय में आई है जब इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता पैकेज हवाई मार्ग से गिराए जा रहे हैं। गाजा के अस्पतालों ने पिछले 24 घंटों में भुखमरी और कुपोषण से जुड़ी 7 नई मौतों की सूचना दी। इस बीच फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इजरायली बलों पर रविवार तड़के उसके गाजा मुख्यालय में हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उधर रूस ने रविवार तड़के कीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 बच्चों सहित कम से कम 31 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने रूस के प्रमुख ठिकानों पर घातक जवाबी हमले किए। मास्को के लगातार हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए। एक अलग घटना में यूक्रेनी ड्रोन ने कथित तौर पर सोची में एक तेल डिपो में आग लगा दी, जो दक्षिण पश्चिमी रूसी रिसोर्ट है और जिसने 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। उधर झारखंड के दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। श्री सोरेन का सोमवार की सुबह 8:56 पर 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और उनका 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। झारखंड के कैथोलिक समुदाय की ओर से रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संदेश में लिखा, अत्यंत दुख और पीड़ा का अनुभव करते हुए मैं आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसे महान नेता जिन्होंने जनजातीय समाज में विशेषकर झारखंड में सम्मान पूर्वक दिशोम गुरु के रूप में जाना जाता रहा है, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, सेवा और समाज के वंचित तबके की आवाज बनने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने आदिवासी समाज की अस्मिता, अधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया वह प्रेरणास्पद और अनुकरणीय है। झारखंड राज्य उनके संघर्ष के लिए चिरकाल तक ऋणी रहेगा। दिशोम गुरु न केवल एक राजनेता रहे बल्कि वे जनजातीय चेतना के प्रतीक और सामाजिक न्याय के सच्चे प्रहरी रहे हैं। उनकी सादगी, ईमानदारी और आदर्शों से भरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को बोकारो जिले के नेमरा गांव में हुआ था। 1970 के दशक में जब आदिवासी इलाकों में कोयला खदानों और खनिज संपदा पर बाहरी कब्जा बढ़ा तो शिबू सोरेन ने आदिवासियों को एकजुट किया। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। शिबू सोरेन की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें लोकसभा तक पहुंचाया। श्री शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके पुत्र हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। JMM अभी भी राज्य की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।